आगे सबक देखिए भाई। फइन मज़तिल मुद्दतु वलम युद्रिकि ज़रउ फअलल आमिलि अजरु मिस्लि नसीबिहि मिनल अर्ज़ हत्ता युद्रिका अय अजरु मिस्लि मा फीहि नसीबुहु वनफ़क़तु ज़रउ अलैहि मा बिल हिससि मिस्लु उजरति सक़्य व गैरिहि मिनल अमलि यकूनु अलैहि मा बिक़द्रिल हिससति। भाई हमने किताबुल मुजारआह पढ़ना शुरू की थी और इन्होंने आपको बतलाया कि मुजारआत कहते हैं जमीन को बटाई पर देना, यानी काश्त के लिए किसी को जमीन देना इस शर्त पर कि पैदावार में दोनों शरीक होंगे। और आपने पढ़ा था कि ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक जायज नहीं, जबकि साहिबैन रहिमहुमल्लाह वो इसको जायज करार देते हैं और फतवा साहिबैन के कौल पर है। आगे सबक देखिए। फइन मज़तिल मुद्दतु वलम युद्रिकि ज़रउ, अगर मुद्दत गुजर गई वलम युद्रिकि ज़रउ और फसल तैयार न हुई, फसल न पकी। मेरी किताब में वलम युद्रक लिखा है भाई, रा पर फतहा लिखा है भाई, ये दुरुस्त नहीं है भाई। अदरा का युद्रिको अरबी में कहते हैं खेती जब पक कर तैयार हो जाए या फल जब पक कर तैयार हो जाए तो कहते हैं अदरा का जरऊ। देखो मारूफ पढ़ रहे हैं, अदरा का जरऊ खेती पक गई, या फल अदरा का समारू फल पक गया। बात समझ में आ रही है? तो ये फिर लाजिम है, तो ये मारूफ ही इस्तेमाल होगा खेती के लिए भाई। आपने पढ़ा कि आकदे मुजारात में मुद्दत का मुतायन करना जरूरी है और शर्त है। मसलन मुद्दत जिक्र की चार माह की मुद्दत जिक्र की और चार माह गुजर गए, पूरे हो गए, लेकिन अभी खेती पक्की नहीं, तैयार नहीं हुई, तो कहते हैं इस सूरत में फिर जो जायद वक्त होगा, जायद वक्त, उस जायद वक्त का अजरे मिसल देना पड़ेगा आमिल को। किसको देना पड़ेगा भाई? वो शख्स जो खेती की हिफाजत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी देखभाल में लगा हुआ है, मुद्दत तो पूरी हो गई, मसलन चार माह का वक्त तय हुआ था, चार माह में फसल तैयार नहीं हो सकी, अभी कम से कम एक माह और लगेगा भाई, ये जितने भी दिन और लगेंगे, तो ये बाकी दिन भी वो अमल करेगा और इस अमल की उसको अलहदा से उजरत मिसल दी जाएगी कि इस जैसा काम कोई शख्स करे तो उसको कितनी उजरत दी जाती है, वो उजरत इसको दी जाएगी। और नीज ये भी याद रखना कि अब चार माह तो गुजर गए, अब जो एक माह जायद लग रहा है तो इस दौरान उस जमीन वाले की जमीन भी तो मशगूल है। अकद तो कितने का हुआ था? चार माह का। अब एक माह मजीद इसकी जमीन मशगूल रहेगी तो उसका किराया अजरे मिसल देना पड़ेगा उस जमीन के मालिक को, आमिल देगा। आमिल क्या करेगा? जमीन के मालिक को उस जमीन का किराया देगा, अजरे मिसल देगा, उस जैसी जमीन का जो किराया बनता है एक महीने का वो देगा। और फिर इसमें यह भी याद रखना, ये जितना हिस्सा इसका है उसके बकदर किराया देगा, पूरा किराया नहीं देगा। मसलन निसफ निसफ तय हुआ था कि फसल कितनी होगी, निसफ निसफ तय होगी, तो ये जो एक महीने के जमीन का किराया देना है, अब ये सारी फसल का नहीं देना क्योंकि इसमें से आधी फसल तो जमीन वाले की है और आधी किसकी है? आमिल की है। तो आमिल अपनी फसल का किराया देगा, यानी यूं कहो आधी जमीन का किराया देगा, उसको पूरी जमीन का किराया नहीं देगा क्योंकि आधी फसल तो जमीन वाले की अपनी है भाई। और अगर हिस्से सुलुस और दो सुलुस तय हुए थे, मसलन काम करने वाले को एक तिहाई मिलेगा, सुलुस मिलेगा, और जो जमीन का मालिक है उसको दो सुलुस मिलेंगे, तो किराया भी उसी के बकदर होगा। मालूम हुआ अब जो फसल खड़ी है जमीन पर इसमें से दो सुलुस जमीन वाले के हैं और एक सुलुस किसका है? आमिल का है, काम करने वाले का। तो वो अब इस जमीन का जो तीसरा हिस्सा किराया बनता है वो देगा क्योंकि तीसरे हिस्से में उसकी फसल है और दो हिस्सों में तो जमीन के मालिक की अपनी फसल है। सूरत समझ में आ गई? अब देखिए किताब पर। तो कहते हैं फइन मज़तिल मुद्दत, तो अगर वो मुद्दत जो तय की थी वो गुजर गई, वलम युद्रिक ज़रऊ, और फसल पकी नहीं है, तैयार नहीं हुई, तो अदरक युद्रिक को क्या माना है, फसल का पक जाना, फसल का पुख्ता हो जाना, तैयार हो जाना। तो फइन मज़तिल मुद्दत, पस अगर वो तयशुदा मुद्दत गुजर गई, वलम युद्रिक ज़रऊ, इस हाल में कि खेती तैयार नहीं हुई, पुख्ता नहीं हुई, फ़अल आमिली अजरु मिसली नसीबी ही मिनल अर्जी, तो आमिल पर यानी काम करने वाले पर अजरु मिसली नसीबी ही, जो इसका हिस्सा है उसके अजरे मिसल आएगी, उसके मिसल उस पर अजरु मिसली नसीबी ही। लफ्जों पर तवज्जो करें भाई, अजरु मिसली नसीबी ही, तर्जमा आखिर से करूंगा, उसका जो हिस्सा है उसके बराबर उजरत इस पर आएगी, उसका जो हिस्सा है उसकी उजरत आएगी, मिनाल अर्जी जमीन में, यानी जमीन में जितनी जमीन में उसकी फसल लगी हुई है उतनी ही उजरत उस पर आएगी। और जमीन में सारी तो उसकी फसल नहीं है, आधी या दो सुलुस तो किसके हैं, जमीन वाले के हैं, तो बस जितना यानी हिस्से तय हुए उस हिस्से के एतबार से देखेंगे कि इस पर कितना किराया बनता है आमिल पर, सारी सारी जमीन का किराया वो नहीं देगा, तो उसका अजर उसकी उजरत उस पर आएगी। हत्ता युदरी का, यहां तक कि वो फसल पक जाए, वो फसल पुख्ता हो जाए, बात समझ में आ गई, वो चाहे 20 दिन में पुख्ता होती है चाहे 1 महीने में पुख्ता होती है, उसका किराया देना पड़ेगा। आई अजरु मिसली माफी ही नसीबुहू, देखो खुद बतला रहे हैं, आई अजरु मिसली, वो अजरे मिसल, अजरु मिसली मा, मा से मुराद जमीन है, उस जमीन की का अजरे मिसल, उस जमीन के का अजरे मिसल, फी ही नसीबुहू, जिसमें उसका हिस्सा है, जितनी जमीन में इस आमिल का हिस्सा है, और इस आमिल की सारी फसल है या आधी फसल है, हां तुम गोया आधी जमीन में इसका हिस्सा है तो आधी जमीन का किराया देगा। और अगर यह तय हुआ था कि ये आमिल को चौथा हिस्सा मिलेगा और 3/4 फसल किसकी होगी, मालिक की, तो इस वक्त कितनी जमीन में इसका हिस्सा है, चौथे हिस्से में है, तो इस पर सिर्फ चौथा हिस्सा किराया आएगा भाई। तो आई अजरु मिसली माफी ही नसीबहू, तो उस पर अजरे मिसल होगा मा उस जमीन का, फी ही नसीबहू, जिसमें उसका हिस्सा है, वह नफकत उस जरअ अलैहिमा। जी यहां से एक और जाब्ता भी बतला रहे कि भाई अब तक तो जो तय हुआ था सारी मेहनत देखभाल खर्चा वगैरह किसके जिम्मे था, आमिल के जिम्मे था, आमिल के जिम्मे था, अब जो जायद मुद्दत है इसमें जो खर्चा आएगा वो दोनों पर उनके हिस्सों के बकदर आएगा, दोनों पर हिस्सों के बकदर आएगा, और जो जो खर्चा होता है मसलन पानी का खर्चा है, कोई दवाई वगैरह ऊपर स्प्रे करनी है उसका खर्चा है, या कोई और चीज है जिसका खर्चा करना है, तो वो सारा खर्चा जितना जिसका फसल में हिस्सा उस पर उतना आएगा और दूसरे पर उसके मुताबिक आएगा। अगर फसल आधी आधी तय हुई है तो आधा खर्चा एक पे आएगा, आधा खर्चा दूसरे पर, और अगर एक के लिए सुलुस था दूसरे के लिए दो सुलुस थे तो खर्चा भी उस सुलुस वाले पर सुलुस आएगा और दो सुलुस वाले पर दो सुलुस का खर्चा आएगा। यह माना है वरना फकत ज़रअ अलैहिमा, और फसल का खर्चा उन दोनों पर आएगा, बिल हिससी उनके हिस्सों के बकदर, मिसलू उजरत सकी, जैसे कि पानी पिलाने की उजरत है यानी सैराब करने की उजरत है, वगैरी ही, या इसके अलावा, मिनल अमल अमल में से, इसके अलावा अमल में से, यकून अलैहिमा बिकदरिल हिस्सती, वो इन दोनों पर होगा उनके हिस्सों के बकदर, का अजरिल हसादी व रिफाई व दौसी व तदरियती, जैसे के हसाद, हसाद का माना है काटना, खेती का काटना, हा के फतहा के साथ है, का अजरिल हसादी, जैसे कि खेती काटने की उजरत है, व रिफा, रिफा का माना है उठाना, उठाना, व दौसी, दौस का माना है गाहना, फसल को गाहना, व तजरियती, तजरिया का माना है उड़ाना भाई, फसल को उड़ाना, ये क्या माना भाई, देखो भाई आजकल तो बड़ा आसान है फसलों का भाई, फसल पककर तैयार होती है और मशीनों की मदद से और मशीनों वगैरह की मदद से एक ही दिन में सारी फसल कट भी जाती है, दाने भी अलग हो जाते हैं और मंडी में भी पहुंच जाती है। हालांकि कदीम जमाने में यह कई दिन का अमल होता था और बड़ा मुश्किल, क्योंकि इस वक्त धूप सख्त होती है, तो धूप के अंदर काम करना और कई दिन तक ये सिलसिला चलता था भाई। सबसे पहले क्या किया जाता था कि फसल को काटा जाता था। अब कई आदमी मिलकर फसल काटते, भाई पूरे खेत है, छोटा खेत हो वो तो आसान है, लेकिन बड़े खेत हैं भी तो बहुत तकलीफ मुश्किल काम है, तो कई आदमी मिलकर काटते, और वो जो काटते जा रहे हैं फसल, उसके बंडल बनाते जा रहे हैं भाई। बात समझ में आ रही है? वो
जी
बांधते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। तो ये हुआ हसाद भाई, खेती का काटना, और ये बड़ा मुश्किल और मेहनत तलब काम है। बाज़ औकात और मजदूरों को बुलवाया जाता है, उनके जरिए सारी फसल कटवाई जाती है। फिर इन सारे जो बंडल तैयार हो गए, खेती बांधी हुई पड़ी है, जगह जगह पूरे खेत में फैली हुई है, इस सारे को इकट्ठा करते एक जगह पर, इसके लिए फिर काम करने वाले कर चाहिए भाई। तो ये है रिफा भाई। पहला क्या था कि खेती का काटना, वो था हसाद, और ये जो फिर सारी फसल को उठाकर एक जगह इकट्ठा किया जाता, इसको कहते हैं रिफाग भाई, रिफाग। उसके बाद तीसरा मरहला आता कि कोई सख्त और हमवार जमीन के टुकड़े पर, जहां वो फसल इकट्ठी की है, वो उसी जगह पर इकट्ठी करते थे जहां हमवार और सख्त जमीन होती, उस जमीन पर वो फसल के बंडल खोल खोल कर फैला दिए जाते, और फिर उसके ऊपर बैलों को चलाते, बैलों को उस फसल के ऊपर चलाते चलाते जा रहे हैं, मुसलसल चला रहे हैं भाई, मुसलसल चलाते जा रहे हैं। तो उसका फायदा यह होता था कि जो फसल चूंकि खुश्क है, तो उसके ऊपर जब बैलों को चला रहे हैं, तो वो बैलों के कदमों में रोंदने से वो दाने फसल से निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो वो सारा दिन उनके उसके ऊपर चलाते रहते थे भाई, और मजीद फसल डालते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मजीद सारा दिन जब वो अपने कदमों से उनको रोंदते रहे, तो अब फसल और दाने अलग अलग हो गए, दाने फसल से निकल आए, लेकिन सारे पड़े इकट्ठे ही हैं, वही दाने हैं, वही भूस है, सारा कुछ वही पड़ा हुआ है, मिक्स पड़े हैं। जब सारे ये दाने अलहदा हो गए, तो ये इसको कहते हैं गाहना, दौस भाई, दौस। दौस का माना होता है कदमों तले किसी चीज को रौंदना। तो ये जो गाहना, ये जो बैल के कदमों तले ये सारी फसल को रौंदा जाता था, ये है दौस भाई, दौस। और उर्दू में क्या कहते हैं? गाहना, फसल का गाहना। उसके बाद अगला मरहला आता था कि वो जो फसल और दाने, यानी यूं कहो भूस और दाने इकट्ठे पड़े हैं, तो वो बेलचा नुमा चीजें लेकर, बेलचे जैसी, उस फसल को बेलचे में उठाते और जरा 7-8 गज दूर, 7-8 गज दूर इसको जोर से हवा में उछाल देते। अब वो हवा चल रही होती थी कुछ ना कुछ, तो वो जो भूस होता था वो पीछे ही रह जाता, और दाने सख्त होते थे वो 7-8 गज दूर जाकर गिरते थे। इस तरह सारा आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहां तक कि वो सारे दाने सामने ढेर लग जाएगा और जो भूस है वो दरमियान में ही रह जाएगा भाई। सूरत समझ में आ गई? फिर वो मजीद सफाई की जरूरत हुई तो दोबारा भी उसको इसी तरह करते थे। तो इस तरह फिर वो दाने अलहदा हो जाते थे और भूस अलहदा हो जाता था। इसको कहते थे तजरिया, तजरिया, ये हवा में जो उड़ा रहे हैं उसको फेंक रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं ये सारे उन दोनों पर होंगे, का अजरिल हसादी, जैसे कि भाई देखो बात इन्होंने क्या की कि जब जायद मुद्दत लगे, तो जायद मुद्दत में खर्चा दोनों पर आएगा, सिर्फ आमिल पर नहीं आएगा। पहले तो सिर्फ आमिल पे था, लेकिन अब जो जायद मुद्दत लग रही है इसमें खर्चा दोनों पर आएगा। जैसे कि खेती के काटने की उजरत है, उठाने की उजरत है, गाहने की उजरत है, और उसको हवा में उड़ाने की उजरत है। सूरत समझ में आ रही? सवाल कि भाई ये तो उस काम करने वाले पर अजर आना चाहिए, आप कह रहे हैं कि ये गाहना वगैरह दाने अलहदा करना, ये उजरत भी किस पर आएगी? दोनों पर आएगी। तो याद रखना भाई, चाहे खेती वक्त के अंदर तैयार हो चाहे वक्त के बाद तैयार हो। ये जो आकदे मुजारात किया जाता है, जब खेती पक जाती है तो आकद खत्म हो जाता है। खेती जब पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो अमल खत्म हुआ। अब इसके बाद ये जो खेती का काटना है, गाहना है और वगैरह जो जो अमल है, वो चाहे अभी मुद्दत बाकी ही क्यों ना हो, ये दोनों पर आएगा भाई, क्योंकि आकद कहां तक मुकम्मल हो गया, खेती के पकने तक। तो ये उसके ऊपर जाहिद अमल है, लिहाजा ये दोनों पर आएगा, चाहे मुद्दत के अंदर तैयार हो फसल, चाहे मुद्दत के बाद तैयार हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, लेकिन ये भी याद रखो, इमाम आगे आपको बतलाएंगे कि इस अमल में दोनों शरीक होंगे, ये खेती काटने में, उठाने में, गाहने में और इसके दाने अलग करने में, इसमें दोनों शरीक होंगे। अगर इसकी शर्त, अकद करते हुए शर्त लगा दी, ये सारा आमिल को करना पड़ेगा, सारे काम तुमने करने हैं भाई आखिर तक, कहते हैं इस सूरत में अकद मुजारात फासिद हो जाएगा। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फासिद नहीं होगा, अगर शर्त लगा दी और लोग ऐसा करते हैं तो फिर शर्त के मुताबिक आमिल ही को सारा कुछ करना पड़ेगा। और आगे ये भी आपको बतलाएंगे कि इमाम सरखसी भी फरमाते हैं कि हमारे इलाके में भी यही रिवाज है, तआमुल है, और तआमुल मैंने बतलाया था शरई दलीलों में से है, कि तआमुल की वजह से बहुत से ऐसे मसाइल जो जायज नहीं होते, तआमुल की वजह से उनको जायज करार दिया जाता है, लोगों की सहूलत और आसानी के लिए, लोगों की सहूलत और आसानी के लिए। तो इमाम सरखसी फरमाते हैं कि हमारे इलाके में भी ये शर्तें किस पर लगाई जाती हैं, आमिल पर, कि वो ये सारे काम करेगा, और तो लोगों का इस पर तआमुल है, लिहाजा ये जायज है भाई। और हमारे इलाकों में भी अमूमन इसी तरह होता है कि ये खेती काटना वगैरह सारा किसके जिम्मे होता है, आमिल के जिम्मे होता है। तो अगर तआमुल है तो ये आमिल ही के जिम्मे होगा और इससे अकद फासिद भी नहीं होगा। लेकिन अगर तआमुल नहीं है, फिर इसकी शर्त लगाने से आकद क्या हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। अब देखिए किताब पर कहते हैं का अजरिल हसादी, जैसे कि खेती काटने की उजरत है, व रिफाई और उसको उठाने की उजरत है, व दौसी और गाहने की उजरत है, व तजरियती और हवा में उड़ाने की, या यूं कहो दानों को अलग करने की जो उजरत है, फइन्नहु अलैहिमा बिकद्री हिस्सति कुल्ली वाहिदिन मिन्हुमा, क्योंकि ये जो है उन दोनों पर आएगी, बिकद्र हिस्सति कुल्ली वाहिदिन मिन्हुमा, उन दोनों में से हर एक का जो हिस्सा है उसके बकदर, अगर आधा आधा हिस्सा है तो आधा खर्चा एक पर, आधा खर्चा दूसरे पर, और अगर सुलुस और दो सुलुस की तकसीम करनी है तो सुलुस वाले पर सुलुस खर्चा और दो सुलुस वाले पर दो सुलुस खर्चा आएगा। फइन शुरिता अलल आमिल, बस अगर ये आमिल पर शर्त लगाई गई फसादत, तो अकद क्या हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। ये जो मजकूरा चीजें हैं भाई, मजकूरा चीजों की शर्त किस पर लगाई गई, आमिल पर लगाई गई, जैसे हसाद, रिफा, दौस, तजरिया वगैरह, इनकी शर्त अगर आमिल पर लगाई गई कि ये काम भी उसको करना पड़ेंगे, तो फसादा तौकत फासिद हो जाएगा। लियानहु शर्तुन मुखालिफुन लिमुक्तज़ल अक़्दी, क्योंकि ये ऐसी शर्त है जो मुक्तज़ा अक़्द के मुखालिफ है। मुक्तज़ा अक़्द के भाई, अक़्द के मुखालिफ क्यों है, कहते हैं फइन ज़रअ इदा उदरिका, नहीं भाई उदरिका नहीं, अदरका, फइन ज़रअ इदा अदरका, इसलिए क्योंकि फसल जब पक गई, इंतहल अक़्दु, तो अक़्द क्या हो गया, इंतहा को पहुंच गया, अक़्द खत्म हो गया। तवज्जो है, बतला रहे हैं भाई कि ये जो शर्त लगा दी ना कि ये काटने वगैरह की उजरत किस पर है, आमिल पर, यह शर्त मुक्तज़ा अक़्द के खिलाफ है, इसलिए क्योंकि जब खेती पक गई तो आकद क्या हुआ, आकद खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब उस आकद के पूरा हो जाने के बाद के कामों की शर्त आप किस पर लगा रहे हैं, आमिल पर, ये तो मुक्तज़ा आकद के खिलाफ है। आकद तो ये तकाजा करता है, आकद के दौरान कोई काम आए वो तो ठीक है, आप लगा सकते हैं शर्त, लेकिन आकद के मुकम्मल होने के बाद की चीजों की शर्त तो किसी पर नहीं लगा सकते। तो ये शर्त ऐसी हुई मुक्तज़ा आकद के खिलाफ है, आकद इसका तकाजा नहीं करता, अकद तो तकाजा करता है जब अकद खत्म हो गया, अब बाद की चीजों को इसमें दाखिल नहीं किया जा सकता। यह माना है फइन ज़रअ इदा अदरका, इसलिए क्योंकि खेती जब वो पक गई, इंतहल अक़्दु, तो अकद मुकम्मल हुआ। वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह इन्नहु यसिहु, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से ये रिवायत है कि इन्नहु यसिहु, कि ये सही है, अय यसिहु शर्त, ये शर्त
सही है।
सही है भाई। देखो इन्नहु यसिहु कि ये सही है भाई, क्या चीज सही है, शारिह ने बतला दिया, अय यसिहु शर्तु, शर्त सही। तो यसिहु के अंदर जो हुआ जमीर है वो शर्त को राजे है, वो ऐसी शर्त लगाना सही है। व लजीमा हूं, और ये उस पर लाजिम होगी, लितआमुली, किसकी वजह से, तआमुल की वजह से, कि लोग बाहम इस तरह मामला करते हैं। قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى هو الأصح في ديارنا, امام سرخسی رحمه اللہ فرماتے ہیں هو الأصح, یہی زیادہ صحیح قول ہے, فی دیار, یہی زیادہ صحیح ہے, فی دیارنا, ہمارے ہمارے علاقوں میں, ہمارے علاقوں میں اسی طرح رائج ہے, لوگ کھیتی کے کاٹنے وغیرہ کی سارا, یہ کس کے ذمہ ہوتا ہے, عامل کے ذمہ,
بالکل
تعامل ہے, تو لہٰذا یہ جائز ہے۔ تو کہتے ہیں ہول اصح, یہی قول زیادہ صحیح ہے, فی دیارینا, ہمارے علاقوں میں, لوقوع التعامل, تعامل کے واقع ہونے کی وجہ سے, کہ لوگ ایسا کرتے ہیں یہاں پر۔ فالحاصل, جی اب حاصل بتلانے لگے ہیں, مزارعت کے باب کیا حاصل ہو, یعنی کو خلاصہ, خلاصہ بتلانے لگے, کہتے ہیں فل حاصل, تو حاصل یہ خلاصہ یہ کہ ان کل عمل قبل الادراک فہو علی العاملی, کہ ہر وہ عمل جو فصل پکنے سے پہلے ہو, فہو علی العاملی, تو وہ عامل پر ہوگا, وما بعدہ فعلیہما, اور فصل پکنے کے بعد جو ہے وہ فعلیہما بالحصص, وہ ان دونوں پر ہوگا, ان کے حصوں کے بقدر۔ واللہ عالم, اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی, حاصل کلام کیا ہوا, عقد کب ختم ہوتا ہے, عقد مزارعت,
کھیتی
جب
پکنے
کھیتی پک جائے, پختہ ہو جائے۔ تو کھیتی کے پختہ ہونے سے پہلے جو بھی عمل ہے وہ کس کے ذمے ہوگا, عامل کے ذمے, اور کھیتی کے پکنے کے بعد جو بھی عمل ہوگا وہ ان دونوں پر, جن میں عقد مزارعت ہوا ہے, ان دونوں میں ان کے حصوں کے بقدر ان دونوں پر آئے گا۔ آگے دیکھیے بھائی, کتاب المساقات هي دفع الشجر الى من يصلحه كجزء من ثمره وهي كالمزارعه حكما وخلافا وشروطا۔ آگے مساقات کا باب آ گیا بھائی۔ مساقات بھائی باغ دینا کسی کو بھائی۔ مساقات اور مزارعت بالکل ایک ہی چیز ہیں۔ فرق صرف اتنا کہ مزارعت میں فصل کے بارے میں عقد ہوتا ہے۔ کس کے بارے میں؟
فصل۔
اور مساقات میں باغ پر یہی عقد ہوتا ہے۔ مثلا آپ کا ایک باغ ہے اور اس میں سینکڑوں درخت لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ کسی شخص سے عقد کرتے ہیں کہ بھائی اس باغ کا آپ نے خیال رکھنا ہے, حفاظت کرنی ہے, زائد شاخیں وغیرہ درختوں کی جو ہو ان کی صفائی کرنی ہے, ان کو کاٹنا ہے اور دیکھ بھال کرنی ہے, درختوں کو پانی لگانا ہے, اور جو اس سے پھل حاصل ہوگا وہ ہم دونوں آدھا آدھا کریں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں مساقات۔ کیا کہتے ہیں؟ مساقات۔ مساقات سقیون سے ہے, سقیون, اور سقی کسے کہتے ہیں؟ سیراب کرنا, پانی پلانا۔ تو اس میں بھی کیا ہے, وہ صرف پانی پلاتا ہے۔ مزارعات میں تو وہ فصل بھی کاشت کرتا تھا نا, فصل بھی کاشت کرنا پڑتی تھی, تو یہاں پر صرف وہ کیا کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, زائد شاخوں کو کاٹتا ہے اور پانی اس کو, درختوں کو پانی لگاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو مساقات کہتے ہیں۔ یہ مزارعات سے بہ لحاظ الگ ہے کہ وہ فصل کے بارے میں ہے اور یہ باغ کے بارے میں۔ وہاں باقاعدہ بیج لگانے پڑتے ہیں پھر فصل اگتی ہے, یہاں بیج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں, درخت پہلے سے تیار کھڑے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کتاب المساقات ہی دفع الشجر الى من يصلحه, یہ حوالے کرنا ہے درختوں کو, الى من, اس شخص کے, يصلحه, جو ان کی دیکھ بھال کرے, جو ان کی اصلاح کرے, کا جز ام من ثمرہ, یہ کا جز بھائی یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے, بی جز ام من ثمرہ, یہاں کاف کے بجائے با ہونی چاہیے, بی جز ام من ثمرہ, پھلوں کے کچھ حصے کے بدلے, پھلوں کے کچھ حصے کے بدلے ہوتا ہے یاقت, کہ جو پھل تیار ہوگا आधा आपका होगा, आधा मेरा, या एक सुलुस आपका होगा, दो सुलुस मेरे, या रोबो आपका होगा, तीन रोबो मेरे। तो ये फलों के कुछ हिस्से पर होता है। तो काफ के बजाय यहां क्या होना चाहिए, यहां बा होनी चाहिए भाई। तारीफ समझ में आ गई भाई। यह दफ़ शजरी इला मन युस्लिहु बिजुज़ मिन समरी ही, ये दरख्त को हवाले करना है उस शख्स के जो उसकी इसलाह करे, यानी देखभाल करे, ख्याल रखे, बिजुज़ मिन समरी ही, उसके फल के कुछ हिस्से के बदले। वही अकल मुजारती, और यह मुसाकात किसकी तरह है, मुजारत की तरह है, हुक्मन हुक्म के एतबार से भी, वह खिलाफन और इख्तिलाफ के एतबार से भी, वह शुरूतन और शर्तों के एतबार से भी। क्या बतलाया कि मुसाकात किसकी तरह है, मुजारात की तरह, किस एतबार से, हुक्म के एतबार से, किसके एतबार से, जैसे मुजारात में फतवा उसके सही होने पर है, इसी तरह मुसाकात में भी फतवा इसके सही, दोनों का हुक्म एक है, मुजारात जायज तो मुसाकात भी जायज, और नीज इख्तिलाफ भी, ये इख्तिलाफ भी इसमें उसी की तरह है, जैसे वहां इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मुजारात जायज नहीं, इसी तरह वो फरमाते हैं मुसाकात भी जायज नहीं, और जैसे वहां पर साहिबैन फरमाते थे कि मुजारात जायज है, यहां पर भी साहिबैन क्या फरमाते हैं कि मुसाकात जायज है। वह शुरूतन और शर्तों के एतबार से भी मुसाकात मुजारात की तरह है, जैसे उसकी जो शर्तें थीं वही सारी शर्तें यहां पर भी होंगी, बशर्ते कि यहां मुमकिन हो, बशर्ते कि यहां मुमकिन हो, अगर मुमकिन ही नहीं है तो अलग बात है भाई। मसलन बीज की, वहां बीज की भी शर्त थी कि बीज कौन लगाएगा भाई, यहां तो बीज की शर्त लग ही नहीं सकती, तो जो शर्तें मुमकिन हैं वो उसी तरह होंगी, जो मुमकिन नहीं वो नहीं भाई। देखिए भाई किताब पर, अब यही तफसील बयान करने लगे जो मैंने बयान की। मैंने क्या बताया, हुक्म से क्या मुराद है, जो फतवा है इसके जवाज पर, और खिलाफ से क्या मुराद है, साहिबैन और इमाम साहब का इख्तिलाफ, और शर्तों से क्या मुराद है, जो यहां पर मुमकिन है वो सब, तो उसी की तफसील अब करने लगे। कहते हैं फइन हुक्म अल मुसाकात हुक्म अल मुजारआती, कि मुसाकात का हुक्म मुजारत के हुक्म की तरह है, फी अन अल फतवा अला सेहतिहा, इस बात में कि इस फतवा जो है इसके सही होने पर है, वफी अन्नहा, और इस बात में, इन्होंने कहा ना मुसाकात किसकी तरह है, मुजारात की तरह, वो तीन चीजें जिक्र की थी, हुक्मन व खिलाफन व शुरूतन, उसी की तफसील अब बयान कर रहे हैं। हुक्म बतला दिया कि दोनों का हुक्म एक होने का मतलब यह कि फतवा इसके सही होने पर है, और इख्तिलाफ से क्या मुराद है वो बतलाने लगे हैं। वफी अन्नहा बातिलतुन इंद अबी हनीफा रहमतुल्लाह खिलाफन लहुमा, कि ये मुसाकात बातिल है इमाम साहिब के नजदीक, बखिलाफ साहिबैन की कि उनके नजदीक बातिल नहीं। वफी अन्न शुरूतहा कशुरूतिहा, और इस बात में कि इसकी शर्तें जो है मुसाकात की, कशुरूतिहा, वो मुजारात की शर्तों की तरह है, फी कुल्ली शर्ती यमकिन वजूदुहा फिल मुसाकाती, हर उस शर्त में जिसका वजूद मुमकिन हो, जिसका होना मुमकिन हो, फिल मुसाकाती, किस में, मुसाकात में, तो इसका हुक्म उसी की तरह होगा। का अहलियतिल आकिदैन, जैसे आकद करने वालों का अहल होना, उनका अहल होना यानी आकिल होना, व बयानी नसीबिल आमिली, और जैसे कि आमिल का हिस्सा बयान करना, मुजारात में भी क्या था, आमिल का हिस्सा बयान किया जाता था। व तखलियती बैन अल अशजारी व बैन अल आमिली, और नीज खलवत करना यानी खाली छोड़ देना दरख्तों को और आमिल को, आमिल को और दरख्तों को खाली छोड़ देना कि वो उसमें अमल कर सके। वह शिरकती फिल खारिजी, और जैसे कि पैदावार में शिरकत, जैसे वहां फसल में शिरकत होती थी, यहां पैदावार यानी फलों में शिरकत होगी। फअम्मा बयानुल बजरी व नहवहू, बाकी बीज को बयान करना या इस जैसी और कोई शर्त है, फला युमकिनु फिल मुसाकाती, वो तो मुसाकात में मुमकिन ही नहीं, क्योंकि यहां तो दरख्त तैयार खड़े हैं। وعند شافعي رحمه الله تعالى المساقات جائزة, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مساقات جائز ہے, والمزارعات انما تجوز, جی بھئی یاد رکھیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا, وہ فرماتے ہیں कि मुजारात जायज नहीं, मुजारात जायज नहीं, मुसाकात जायज है, मुसाकात जायज है। हां इसी मुसाकात के जिमन में मुजारात भी जायज है। वो क्या फरमाते हैं, मुजारात जायज नहीं, लिहाजा आप अपनी जमीन देकर किसी से काम करवाएं और फिर तय करें कि फसल आदि आदि होगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये जायज नहीं, ये अकद जायज नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हां आप अपना बाग किसी को देते हैं, सैकड़ों दरख्त हैं, लेकिन दरख्तों के दरमियान जो फासला है उस जमीन पर साथ ही फसल काश्त करने का मुआहदा भी कर लेते हैं कि बीच में तुमने फसल भी काश्त करनी है। तो यहां असल मुआहदा किसके बारे में हो रहा है, किसके बारे में हो रहा है, मुसाकात, वो बाग के बारे में हो रहा है, लेकिन जिमनन जो खाली जगह है बीच में दरख्तों के वहां मुजारात का भी आकद कर लिया जाए तो फिर इसकी गुंजाइश है। अब ये मुजारात का आकद मुस्तकिल नहीं है बल्कि ताबिया है, किसके, मुसाकात के। अगर मुस्तकिल होता फिर जायज नहीं था, गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मुसाकात के जिमन में उसके ताबिया रखते हुए इसकी गुंजाइश है और जायज है। और वो दलील देते हैं, वो फरमाते हैं कि दरअसल यहां पर असल आकद जो है वो है मुजारबत, उसके साथ मुशाबहत हम देखेंगे। मुजारबत बिल इत्तेफाक तमाम फुकहा के जायज है। मुजारबत किसे कहते हैं, माल एक का होता है, मेहनत दूसरे की होती है कारोबार में, और फिर जो नफा हासिल होता है उसको हिस्सों के बकदर तकसीम करते हैं, आधा आधा तय किया या सुलुस और दो सुलुस तय किए, जितना भी तय कर लें, इसको कहते हैं मुजारबत। और मुजारबत जायज है बिल इत्तेफाक तमाम फुकहा के नजदीक। तो यहां पर हमने देखा कि मुजारात जो है उसकी तवज्जो है, इमाम शाफी वाला किसको जायज करार देते हैं, मुसाकात, और मुजारात को जायज करार नहीं देते। वो फरमाते हैं देखो असल मुशाबहत देखेंगे मुजारबत के साथ, जिसकी मुशाबहत मुजारबत के साथ है वो जायज, और जिसकी मुशाबहत मुजारबत के साथ नहीं वो जायज भी नहीं। वो फरमाते हैं कि मुसाकात की मुशाबहत मुजारात के साथ ज्यादा है और मुजारात की मुशाबहत ज्यादा नहीं। किस तरह, इस बात को समझ लो। कहते हैं देखो मुजारबत में पैसे एक के होते हैं, मेहनत दूसरे की होती है, किसमें, मुजारबत में पैसे माल एक का होता है, मेहनत दूसरे की होती है, और जो नफा हासिल हो वो आपस में तकसीम करते हैं। असल माल को तकसीम करते हैं आपस में
नहीं,
नहीं असल को नहीं करते, सिर्फ शिरकत किसमें होती है, नफे के अंदर बस। और बेआइन ही इसी तरह मुसाकात में भी है, बाग यानी दरख्त सारे जमीन दरख्त एक के हैं और शिरकत सिर्फ किसके अंदर है, नफा यानी फलों के अंदर शिरकत है। फिर दरख्तों में कोई शिरकत होगी, कुछ दरख्त मामिल के हो जाएंगे, नहीं दरख्तों में कोई शिरकत नहीं है, बल्कि शिरकत किसमें है, सिर्फ फलों में यानी नफे के अंदर शिरकत है। तो ये बिल्कुल मुजारबत की तरह हुआ, मुजारबत में माल एक का था, मेहनत दूसरे की थी और नफा दोनों के दरमियान उसमें शिरकत थी। तो मुसाकात में भी इसी तरह है, जमीन और दरख्त एक के हैं, मेहनत दूसरे की है और नफे में दोनों शरीक हैं। जबकि मुजारात में ऐसा नहीं है, मुजारात में मसलन मैंने आपको अपनी जमीन दी कि इस जमीन में बीज लगाओ, बीज आपका होगा, या बीज मेरा हो या आपका हो, जिसका भी हो बीज लगाना है, आपने मेहनत करनी है, फसल तैयार करनी है और फसल आदि आदि होगी। लेकिन शर्त यह है पहले मैं अपने बीज अलहदा करूंगा, 10 बोरी बीज लग रहे हैं इस खेत में तो मैं 10 बोरी अलहदा करूंगा, बाकी में फिर हम दोनों शरीक होंगे। अब मुझे बताइए अगर बीजों के उठाने की शर्त लगा दी तो आकदे मुजारात क्या हो जाता था, फासिद हो जाता था, आपने पढ़ा था, क्योंकि हो सकता है खेत से हासिल ही 10 बोरी हो, कोई आफत आ जाए और उस 10 बोरी में तो शिरकत खत्म कर दी आपने। तो अब मालूम हुआ मुजारात में सारी फसल में शिरकत करना पड़ेगी, जब सारी फसल में शिरकत करेंगे तो असल के अंदर भी शिरकत आ गई या नहीं, वो जो 10 बोरी है बीच में जी, शिरकत सिर्फ नफे में है या असल समेत सारे में शिरकत है, भाई खेत से 100 बोरी हासिल हुए तो 10 बोरी तो मेरा असल है ना, मैंने लगाए हैं कि नहीं लगाए उसमें, वो तो मैंने लगाए हैं तो उस, लेकिन जब फसल हासिल होती है तो फुकाहा फरमाते हैं सारी फसल में शरीक होना पड़ेगा, वो 10 बोरी अलहदा नहीं कर सकते। तो अब मुझे बताओ, शिरकत सिर्फ नफे में आई या असल भी उस साथ ही शामिल है, असल में भी शिरकत आ गई, असल में भी शिरकत आ गई। हालांकि मुजारबत जिसके साथ मुशाबहत हम देख रहे हैं, मुजारबत में तो सिर्फ नफे के अंदर शिरकत होती है, असल के अंदर यानी रासुल माल के अंदर शिरकत नहीं होती, जबकि मुजारात में नफे के साथ साथ असल में भी शिरकत लाजमी होती है। और अगर आप असल को इस्तेसना कर दें कि असल में शिरकत नहीं है, मैं 10 बोरी अलहदा पहले निकालूंगा, तो इस सूरत में तो आकद ही क्या हो जाता है, फासिद। तो वहां सिर्फ नफे में शिरकत नहीं बल्कि असल में भी शिरकत जरूरी है। तो लिहाजा किसकी मुशाबहत हुई, मुसाकात की ज्यादा मुशाबहत है मुजारबत के साथ या मुजारअत की ज्यादा मुशाबहत है मुजारबत के साथ, मुसाकात की। इसलिए वो फरमाते हैं कि मुजारअत की मुशाबहत नहीं लिहाजा वो जायज भी नहीं, और मुसाकात की मुशाबहत पूरी है लिहाजा वो जायज भी है। मसला समझ में आ गया। हां, इसी मुसाकात के जिमन में अगर आप मुजारात भी करना चाहते हैं, दरख्तों के बीच फसल भी लगाना चाहते हैं, तो उसकी भी गुंजाइश है, वो भी जायज हो गई। मसला समझ में आ गया। तो देखिए किताब पर कहते हैं, वाइंदा शाफी रहमहुल्लाह ताला अल मुसाकातु जाइजतुन वल, के इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल मुसाकातु जाइजतुन, मुसाकात जायज है, वल मुजारातु इन्नमा तजूजु फी जिम्निल मुसाकाती, और मुजारात वो तो मुसाकात के जिमन में ही जायज है, यानी वैसे जायज नहीं। लिअन्नल असला हुवल मुजारबतु, क्योंकि असल क्या है इस बाब के अंदर, मुजारबत है, उसके साथ मुशाबहत देखेंगे। लिअन्न अल असल हुवल मुजारबतु, क्योंकि यहां असल जो है वो मुजारबत है, वल मुसाकातु अशबहु बिहा, और मुसाकात उसके ज्यादा मुशाबे है। लिअन्न शिरकत फिर रिबह फकत, इसलिए क्योंकि इस यहां शिरकत सिर्फ किस में होती है, नफे में। व फिल मुजारआति ला तजूजु शिरकतु फी मुजर्रदिर रिबह, और मुजारआत के अंदर तो सिर्फ नफे के अंदर शिरकत जायज नहीं है, नफे के अंदर तो शिरकत जायज नहीं है। भाई नफा क्या, कहते हैं, वो हुआ माजाद अलल बजरी, वो जो बीज पर जायद है, वो जो बीज पर जायद है सिर्फ उसमें शिरकत जायज नहीं, सारी में शिरकत करना पड़ेगी। आप कहते हैं जी 10 बोरी तो मेरा बीज है, 10 में शिरकत नहीं, बाकी में सिर्फ नफे में हम क्या हो जाते हैं, शरीक। तो आपने पढ़ा था कि इस सूरत में याकत सही नहीं। इबारत भी समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहते हैं, व फिल मुजारआति ला तजूजु शिरकतु फी मुजर्रद रिबह, मुजारात के अंदर सिर्फ नफे के अंदर शिरकत जायज नहीं है। सिर्फ नफा क्या है, कहते हैं, वह हुआ माजाद अलल बजरी, वो जो बीज पर जायद है, 100 बोरी हासिल हुई तो इसमें नफा क्या है, 10 बोरी तो बीज के हैं तो 90 बोरी यानी नफा है, लेकिन सिर्फ उस 90 में शिरकत जायज नहीं बल्कि सारे में शिरकत जरूरी है। इल्लल मुद्दता, सिवाय मुद्दत के। भाई बतला ये रहे हैं कि मुसाकात मुजारात की तरह है, हुक्म के एतबार से भी, मतन को मतन से मिलाओ, हुक्म के एतबार से भी, इख्तिलाफ के एतबार से भी, और शर्तों के एतबार से भी, और शर्तों में तो एक शर्त मुद्दत की भी थी, मुजारात में मुद्दत का मुतय्यन करना भी जरूरी था तो उसका इस्तेसना कर दिया कि बाकी शर्तों के एतबार से तो मुसाकात मुजारात की तरह है। इल्लल मुद्दता, सिवाय किसके, मुद्दत की। मुद्दत की शर्त यहां नहीं है भाई, मुद्दत की शर्त यहां नहीं। फइन नहा तसिह बिला जिक्रिहा, मुसाकात सही हो जाती है बगैर मुद्दत जिक्र किए। मुजारात में मुद्दत का जिक्र जरूरी था लेकिन मुसाकात मुद्दत जिक्र किए बगैर भी सही हो जाती है। वजह इसकी ये आगे आपको बतलाएंगे। कहते हैं इसलिए क्योंकि फसलों के पकने का वक्त मुख्तलिफ होता है, फसलों के पकने का वक्त मुख्तलिफ होता है, और फिर एक खेत वाला अगर 20 दिन पहले फसल काश्त करता है तो उसकी फसल भी 20 दिन पहले तैयार हो जाएगी, और आप एक महीना लेट करते हैं, कुछ दिनों का फर्क होता है या नहीं होता भाई, कि एक ही दिन सारे फसल काश्त करते हैं, नहीं, कुछ ना कुछ फर्क होता है, 10-15 दिन, 20 दिन का। तो जब फसल जल्दी लगाई जाए तो तैयार भी जल्दी हो जाती है। फसल महीना लेट लगाई है लेकिन अभी वक्त है, वक्त होता है ना फसल लगाने का, उस वक्त से लेट हो जाए फिर तो नहीं हो सकता, लेकिन वक्त के अंदर अंदर ताखीर कुछ हो जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर फसल जल्दी लगाओगे तो फसल जल्दी तैयार हो जाएगी, और अगर जरा देर से लगाओगे उसी मुद्दत के अंदर अंदर तो देर से तैयार होगी। तो लिहाजा फसल के पकने का वक्त मुतय्यन नहीं। आपने जमीन अपनी काश्त के लिए दी, उसने अगर जल्दी बीज बोया, और मुद्दत कितनी मसलन मुकरर की, 4 महीने, अगर उसने जल्दी फसल काश्त की तो 4 महीने में फसल तैयार हो जाएगी, और अगर जरा लेट करता है तो फसल क्या हो जाएगी, उससे ज्यादा, उतने ही दिन ज्यादा ले लेगी। तो मुजारहत जो है इसमें मुद्दत मुतय्यन करना पड़ती है, क्योंकि फसल के पकने का वक्त मुख्तलिफ होता है, नीज इलाकों का भी फर्क होता है। जबकि मुसाकात, दरख्तों पर जो फल आना और पकना है, इसका वक्त मालूम होता है, सब लोगों को मालूम होता है कि इस वक्त में वो, क्योंकि वो वहां तो आपने बीज नहीं लगाना, वो तैयार दरख्त लगे हुए हैं, खुद ही उन पर फूल आएंगे, खुद ही उन पर आपने सिर्फ हिफाजत करनी है, पानी पिलाना है, खुद ही उस पर फल आए लगेंगे और वो फल उसी मुद्दत पर, उसी वक्त पर पक कर तैयार हो जाएंगे। तो लिहाजा मुसाकात का वक्त है मालूम, और मुजारात का वक्त क्या होता है, मजहूल। तो लिहाजा वहां मुद्दत मुतय्यन करना जरूरी था, यहां मुद्दत मुतय्यन करना जरूरी नहीं, क्योंकि मुद्दत पहले ही मालूम है। यह माना है इल्लल मुद्दता, सिवाय मुद्दत के। तो इन्होंने आपको बतलाया कि मुसाकात के अंदर मुद्दत को मुतय्यन करना जरूरी नहीं, उसकी तय करने की शर्त नहीं है, बगैर मुद्दत को मुकर्रर किए भी ये अक्दे मुसाकात सही हो जाएगा। तो कहते हैं इल्लल मुद्दता, सिवाय मुद्दत के, फइन्नहा तसिहु बिला जिक्रिहा, ये अक्दे मुसाकात सही हो जाता है, बिला जिक्रिहा, ऐ बिला जिक्रिल मुद्दती, मुद्दत को जिक्र किए बगैर ही, इस्तेहसानन, इस्तेहसानन ये जायज है भाई, बगैर मुद्दत के भी। फइन्न लिइदराक समरी वक्तम मालूमन, इसलिए क्योंकि फलों के पकने का वक्त मालूम होता है भाई, क्योंकि फलों के पकने का वक्त मालूम होता है, यहां कोई बीज लगाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि इस मौसम में फूल आते हैं और इस मौसम में फल पककर तैयार हो जाते हैं, दरख्त पहले से ही तैयार हैं, आपने सिर्फ हिफाजत करनी है और पानी वगैरह लगाना है, जायद शाखों को काटना है वगैरह। यहां भाई इस्तेहसान का लफ्ज आया, इसको समझ लें, ये जगह जगह आएगा भाई, खूब अच्छी तरह इसको समझ लो। याद रखो इस्तेहसान, जो भी शरई दलील, हर वो शरई दलील जो कियास के मुकाबले में आए उसको इस्तेहसान कहते हैं। शरई अदिल्ला 4 है ना, कुरान, हदीस, इजमा और कियास। तो जो भी शरई दलील उसके मुकाबले में कियास आए तो उस शरई दलील को इस्तेहसान कहते हैं। मसलन एक मसला है, आप एक दलील जिक्र करते हैं कियास से, कियास अकली दलील, आप एक अकली दलील जिक्र करते हैं, और मुखालिफ जो है वो कुरान से कोई दलील जिक्र करता है, तवज्जो है, कुरान से कोई आयत जिक्र करता है, तो देखो यहां पर कुरानी दलील आ गई किसके मुकाबले में, कियास के मुकाबले में, तो इसको इस्तेहसान कहेंगे। ये जो कुरानी दलील है, ये जो आयत आपने जिक्र की, इसको क्या कहेंगे, इस्तेहसान। या आपने एक मसले में एक अकली दलील पेश की, यानी कियास पेश किया कि अकल इस बात का तकाजा करती है, और दूसरे ने मुकाबले में कोई हदीस पेश कर दी, तो देखो ये जो दलील है इसके, ये जो हदीस दूसरे ने जिक्र की इसके मुकाबले में क्या है, कियास है, तो इस हदीस को क्या कहेंगे, इस्तेहसान। क्या कहेंगे, इस्तेहसान। या आपने कोई अकली दलील जिक्र की और मुखालिफ ने जो है इजमा को जिक्र किया दलील के तौर पर, तो देखो ये इजमा ऐसी दलील है जिसके मुकाबले में इस वक्त क्या पेश किया गया था, कियास, तो इस इजमा को क्या कहेंगे, इस इस्तेहसान कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस्तेहसान हर वो दलील है, हर वो शरई दलील है जिसके मुकाबले में कियास हो, अगर कियास मुकाबले में नहीं है फिर उसको इस्तेहसान नहीं कहेंगे, तो हर वो शरई दलील जिसके मुकाबले में क्या आ जाए, कयास आ जाए, तो उस शरई दलील को क्या कहेंगे, इस्तेहसान। लेकिन ज्यादातर इस्तेहसान का इतलाक होता है कयास खफी पर। किस पर? याद रखो, कयास जो है अकली दलील, ये दो किस्म पर है। ये जो कयास है ना, कयास ये दो किस्म पर है। एक को कहते हैं कयास जली, एक को कहते हैं कयास खफी। एक को कयास जली और एक को कयास खफी। कयास जली नाम से ही पता चल रहा है, जो जली हो, जाहिर हो, जाहिर हो, अकल जल्दी उस तक पहुंच जाए। अकली दलील है और अकल जल्दी उस तक पहुंच जाती है, उसको क्या कहते हैं, कयास जली। और बाज़ औक़ात अकली दलील होती है लेकिन गौर जरा ज्यादा करना पड़ता है, गहरी बात होती है, उसको कहते हैं कयास खफी। क्या कहते हैं? है अकली दलील लेकिन थोड़ा सा गौर ज्यादा करना पड़ता है, जहन फौरन नहीं पहुंचता, खूब गौर और फिक्र करेंगे फिर पहुंचेगा, तो इसको कहते हैं कयास खफी। नाम से ही पता चल रहा, कयास जली जो जाहिर है, जल्दी अकल पहुंचती है, और कयास खफी, खफी का माना छुपा हुआ, पोशीदा, जो जरा छुपा हुआ है, गहरी बात है और गौर फिक्र करें तो फिर जहन वहां तक पहुंचता है। तो कयास कितनी किस्म का? दो किस्म का, एक कयास जली और एक कयास खफी। हैं दोनों कयास ही, अकली दलीलें हैं। तो ये जो कयास खफी है, ज्यादातर इस पर इस्तेहसान का इतलाक होता है। तो अमूमन जब किताबों में इस्तेहसान आए तो ज्यादातर यही मुराद होता है, कयास खफी। बात समझ में आ गई? लेकिन कयास खफी को भी तब इस्तेहसान कहेंगे जब इसके मुकाबले में कयास जली हो। अभी मैंने बताया था, हर वो शरई दलील जिसके मुकाबले में क्या आ जाए, कयास, तो उसको क्या कहते हैं, इस्तेहसान। तो यहां पर भी इसी तरह है, हर वो कयास खफी जिसके मुकाबले में क्या हो, कयास जली हो, तो इस कयास खफी को क्या कहते हैं, इस्तेहसान। ये याद रखो, कयास चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितना ही खफी क्यों ना हो, इसके मुकाबले में अगर कयास जली नहीं है तो इसको कयास ही कहेंगे, इस्तेहसान नहीं कहेंगे। इस्तेहसान कब कहेंगे? जब इसके मुकाबले में क्या हो, कयास जली हो। कयास जली हो, बात समझ में आ गई? तो कयास अगर खफी हो तो हर हाल में इसको इस्तेहसान कहेंगे। कयास अगर खफी हो तो क्या इसको हर हाल में इस्तेहसान कहेंगे? नहीं। कब कहेंगे? जब मुकाबले में कयास जली हो। अगर कयास मुकाबले में कयास जली नहीं है तो इसको भी कयास ही कहेंगे, इस्तेहसान नहीं कहेंगे, चाहे जितनी भी गहरी बात क्यों ना हो। तो ये ज्यादातर कयास खफी मुराद होता है इससे। और नीज इसको इस्तेहसान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पसंदीदा होता है। क्या होता है? पसंदीदा होता है। इस्तहसना यस्तहसिनु, इस्तेहसान का माना पसंदीदा होना, अच्छा होना। मुस्तहसन उस काम को कहते हैं जो अच्छा हो, पसंदीदा हो। तो इसको भी इस्तेहसान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पसंदीदा होता है, क्योंकि इसमें लोगों के लिए आसानी होती है। क्या होती है? इसमें लोगों के लिए आसानी होती है, इसलिए इसको इस्तेहसान कहते हैं। मुझे बताइए आप कि मुसाकात में मुद्दत की शर्त लगाई जाए कि शर्त जिक्र करना पड़ेगी, शर्त जिसने जिक्र ना की तो आकद क्या हो जाएगा? फासिद। एक सूरत यह है, और दूसरी सूरत यह है कि आप कहें जी मुद्दत लगाने की, मुद्दत की कैद लगाने की कोई जरूरत नहीं, लोगों के लिए किसमें आसानी है जिसमें मुद्दत की शर्त ना हो। भाई तो देखा, ये इसलिए ये मुस्तहसन हुआ, पसंदीदा हुआ। इस यहां पर भी मुद्दत के जिक्र न करने की बात हो रही है, इसको इस्तेहसान कहा जा रहा है। बात समझ में आ गई? ये माना है। तो कहते हैं इस्तेहसानन, ये कि ये इस्तेहसानन सही हो जाता है। फ़ैनल इदराक इस्समरी वक्तम मालूमन, इसलिए क्योंकि फल के पकने के लिए एक मालूम वक्त है। तो यहां इस्तेहसान से क्या मुराद है? कयास खफी। तवज्जो है, मैंने क्या कहा था, इस्तेहसान का ज्यादातर इतलाक किस पर होता है? कयास खफी पर। लेकिन मुकाबले में क्या हो? कयास जली। तो यहां पर भी मुकाबले में कयास जली मौजूद है। कयास जली ये तकाजा करता है कि मुद्दत जिक्र करो, मुद्दत मजहूल होगी तो आकद फासिद होना चाहिए। कयास जली क्या तकाजा कर रहा है? कि मुद्दत को मुद्दत जिक्र करो, मुद्दत मुतायन होनी चाहिए। अगर आप जिक्र नहीं करेंगे मुद्दत तो मजहूल हो जाएगी। तो लिहाजा इस सूरत में इसको क्या होना चाहिए? फासिद होना चाहिए। लेकिन इस्तेहसानन बतलाया कि इस्तेहसान कयास खफी की वजह से इसको जायज करार दिया। कयास खफी क्या? कि फलों के पकने के अमूमन वक्त क्या होता है, सबको मालूम होता है। तो यह कयास खफी है और इसीलिए इसको इस्तेहसान कहा। और इसके मुकाबले में कयास जली मैंने जिक्र कर दिया। वतकउ अला अव्वल समरिन यखरुजु, और ये वाके होगी ये मुसाकात अला अव्वल समरिन, पहले फल पर, यखरुजु जो पैदा हो। भाई देखिए, आपने मुद्दत तय नहीं की, मैंने अपना बाग आपको दे दिया कि तुमने दरख्तों का ख्याल रखना है, जायद शाखें वगैरह काटनी है, सफाई करनी है, पानी लगाना है, और जो फल आएगा वो आधा आधा हम दोनों तकसीम करेंगे। हमने मुद्दत नहीं मुकर्रर की, उसको जिक्र ही नहीं किया, तो इस सूरत में याकद सही हो जाएगा और पहला पहले फल के पैदा होने तक याकद रहेगा। मैंने और आपने याकद कर लिया, तो अब सिर्फ इसी साल फल आएंगे या हर साल फल आते हैं? हर साल, इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, उससे अगले साल भी आएगा, लेकिन ये पहले ही फल पर वाके होगा याकद, जब हमने मुद्दत मुकर्रर नहीं की। लिहाजा इस दफा इस सीजन में जो फल आ जाएगा तो याकद खत्म हो जाएगा जब वो फल पक जाएगा, अगले साल के लिए अलहदा फिर याकद करना पड़ेगा। सूरत समझ में आ गई? तो पहले फल से यह मुराद है जो इस सीजन के अंदर जो फल आए। यह माना नहीं कि शुरू वाले दो चार फल पक गए तो आप कहें ये शुरू वाले फल है, नहीं नहीं, इस सीजन में जो फल आएगा वो सारा मुराद है, अगले सीजन के लिए फिर अलग मुआहदा करना पड़ेगा पहले मौसम के अंदर। यानी फल तो हर साल उस मौसम में वो फल उस दरख्त पर लगता है, और आपने बगैर मुद्दत बयान किए आकद कर लिया, आकद कर लिया, तो इस सूरत में जो पहले मौसम में पहली मरतबा जब फल आ जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो यह अकद मुकम्मल हो जाएगा। अगले मौसम में दोबारा जब फल आएगा उसके लिए अलहदा अकद करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो जब मुद्दत मुकर्रर नहीं की तो वतकाउ अला अव्वली समरी या खुरुजू के याकद वाके हो जाएगा पहले फल पर जो पैदा हो, जो पहला इस मरतबा फल आएगा दरख्तों पर इस सीजन में वो मुराद होगा। वह इदराकु बजरी रुतबती का इदरा के समरी, वह इदरा को बजरी रुतबती, रुतबा जो है ना, रुतबा वैसे तो कहते हैं सब्जी और तरकारी, सब्जी को कहते हैं जिससे सालन वगैरह बनाया जाता है, लेकिन यहां रुतबा से मुराद एक खास घास है भाई, घास जो जानवरों के लिए बतौर चारे के इस्तेमाल होती है, और ये आगे आपको बतलाएंगे भी कि इसको साल में कई दफा काटते हैं, चारे के तौर पर काट लिया, फिर एक दो महीने में फिर दोबारा वो उगाती है, फिर काट लेते हैं, फिर उगाती है, तो ये जानवरों के लिए बतौर चारे के इस्तेमाल होती है, इसको क्या कहते हैं, रुतबा, रुतबा। और इसी में फिर बाज औकात कहते हैं इसको कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया जाए, तो शुरू में तो ये सबस है ना, चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन छोड़ दिया जाए तो फिर आहिस्ता इस पर बीज भी आ जाते हैं, और फिर ये खुश्क भी होती है, और फिर इसके बीज हासिल कर लिए जाते हैं, फिर कहीं और पर किसी और जगह उगानी हो तो ये बीज काम आएंगे। तो ये चारे के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, और बीज उगान, बीज हासिल करने के लिए भी इसको उगाया जाता है भाई। अब कोई इस, ये जो घास है, ये जो चारा है, इस पर आकदे मुसाकात करता है, और ये भी एक दफा उगा दिया, बस ये लगा हुआ है, आप काटते जाएं, हर दो महीने में आप ये फिर आ जाएगा, बार बार बीज नहीं डालना पड़ता। तो इसमें भी देखो सिर्फ मुसाकात होगी, बीज डालना पड़ता है
नहीं,
तो क्या इसके अंदर मुसाकात कर सकते हैं, होगी? कहते हैं हां भाई, इसमें भी मुसाकात कर सकते हैं, और इसके अंदर जब बीज पक जाए वो इसी तरह है जैसे दरख्तों पर फल पक जाए, तो जैसे दरख्तों पर फल पकने से अकदे मुसाकात पूरा हो जाता है, इसी तरह यहां पर भी इस रुतबा के जब बीज पक जाएंगे तो इस पर भी अकदे मुसाकात पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं वह इदराकु बजरी रुतबती, और पक जानना रुतबा के, ये उस चारे के बीजों का इदरा की समरी, ये इसी तरह है जैसे फलों का पक जाना, जैसे फलों के पक जाने से अकद मुसाकात पूरा हो जाता था, इसी तरह यहां पर भी बीज के पकने पर अकद मुसाकात पूरा हो जाएगा। तो कहते हैं अर रुतबतु बिल फारसी यति सीस्ते तर, रुतबा जो है इसको फारसी में सीस्ते तर कहते हैं, सीस्ते तर, तर का माना गीला, गीला। बात समझ में आ रही? एक ये है ना कि गीला वो सबज ही होता है, सबज ही उसको काटते हैं और चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और एक ये कि इसको खुश्क होने दें तो वो तो फिर खुश्क हो जाएगा, तो ये सीस्ते तर, ये जो तर गीली गीली घास है, यानी सबज घास है, यूं कहो सबज घास है, कोई सब्जी कोई पत्ते वगैरह या कुछ होगी भाई सूरत इसकी। तो कहते हैं अर-रुतबतु बिल फारसी यति सीस्ते तर, रुतबा जो है इसको फारसी में सीस्ते तर कहते हैं। फइन्नहु इदा दफअति अर-रुतबतु मुसाकातन, क्योंकि रुतबा जब हवाले कर दी जाए, दफा का माना हवाले करना, जब हवाले कर दी जाए अर-रुतबतु ये चारा जो है ये हवाले कर दिया जाए मुसाकातन, बतौरे मुसाकात के, ला यश्तरितु बयानुल मुद्दती, तो शर्त नहीं है मुद्दत को बयान करना, इसमें भी मुद्दत को बयान करना शर्त नहीं। फयम्तद्दु इला इदरा की बजरिर रुतबती, तो ये अकद लंबा होगा, भाई इसमें भी तो मुद्दत होनी चाहिए। कहते हैं नहीं भाई, मुद्दत की जरूरत नहीं, जैसे वहां पर फलों के पकने का वक्त मालूम है, इसी तरह इसके बीज के पकने का वक्त भी मालूम है। तो कहते हैं फयम्तद्दु इला इदरा की बजरिर रुतबती, तो ये अकद लंबा होगा उस चारे के, उस घास के बीजों के पकने तक। फइन्नहु कइदरा की समरी फिशजरी, क्योंकि ये जो बीजों का पक जाना है ये ऐसे ही है जैसे फलों का पक जाना, फिशजरी दरख्तों में। अकूल, यहां से अब शारह विकाया फरमा रहे हैं। कहते हैं भाई मातिन ने तो ये जिक्र किया कि रुतबा में भी मुसाकात जायज है, उसमें भी मुद्दत को मुतायन करना जरूरी नहीं, और ये कब तक मुद्दत होगी, जब बीज पक जाएं, बीज पक जाएं। तो शारह आपको बतलाएंगे साहिब शरह विकाया कि भाई ये जो रुतबा है ना, इसमें हमेशा बीज ही नहीं मकसूद होते, कभी चारा भी मकसूद होता है, चुनांचे इसको बार बार काटते हैं और वो उगता जाता है, भत्ता के साल में 6-7 दफा या इससे भी इसको ज्यादा काट लेते हैं और ये बार बार उग आता है, तो कभी चारा ही मकसूद होता है और कभी बीज मकसूद होता है, जब बीज मकसूद होता है तो एक दफा काट के बस छोड़ देते हैं और फिर अगली दफा ये जब खुश्क हो जाता है बीज तैयार हो जाते हैं इसके अंदर। तो अगर बीज के लिए है फिर तो बात जाहिर है, जब बीज पकेगा यकदम मुसाकात क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और अगर बीज मकसूद नहीं है बल्कि चारा ही मकसूद है, घास ही मकसूद है, तो कहते हैं फिर पहले जो साल है उसमें आकद सही होगा। किसमें? पहले साल में। किसमें? मुद्दत नहीं मुकरर की लेकिन बीज नहीं लेने, चारा ही लेना है, तो कहते हैं पहले साल के अंदर का आकद सही होगा। पहले साल का मतलब यह नहीं कि पूरा साल, क्योंकि साल तो जिक्र ही नहीं किया, साल जिक्र कर देते फिर तो ठीक था, साल तो जिक्र ही नहीं किया। माना यह है कि उसी साल इस अकद के बाद जब पहली मर्तबा चारा तैयार हो जाएगा पूरा और फिर काटा जाएगा तो इस पर अकद खत्म हो जाएगा। पहली दफा चारा जब क्या हो जाए, तैयार हो जाए, तो फिर अकद खत्म होगा। यह वो सूरत है जब बीज मकसूद नहीं है, चारा ही मकसूद है, तो पहली दफा जब यह चारा तैयार हो गया तो यह अकद क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो फिर दोबारा ये तैयार होगा, फिर काटेंगे फिर से दोबारा तैयार होगा। जब मुद्दत मुतय्यन नहीं की तो पहली मर्तबा जब चारा तैयार है उस वक्त तक यह अकद रहेगा। तो कहते हैं अकूलू, मैं कहता हूं, ये साहिब शरह विकाया फरमा रहे हैं कि अकूलू मैं कहता हूं अलगालिबु अन्नल बदर फीहा गैर मकसूदिन, के गालिब यह है यानी ज्यादातर इसके रुतबा के अंदर ये जो चारा है इसमें ये ज्यादातर यूं होता है कि अन्नल बजरा फीहा गैर मकसूद, इनके बीज इसके अंदर मकसूद नहीं होता, बल तुहसदु फी कुल्ली सनतिन सित्ता मर्रातिन औ अक्सरा, बल्कि इसको काटा जाता है हर साल में 6 मर्तबा या ज्यादा, 6 या ज्यादा मर्तबा काटते हैं भाई फिर ये उगाता है। फइन उरीद अल बजरू, अगर बीज का इरादा किया जाए तो तुहसदु मर्रतन, तो इसको एक ही दफा काटा जाता है, वतुतरकु फिल मर्रति सानिया, और फिर इसको छोड़ दिया जाता है दूसरी मर्तबा में, इला अन युद्रिक अल बजरू, यहां तक कि बीज पक जाए, फिर छोड़ देते हैं फिर नहीं काटते, यहां तक कि बीज पक जाए। फी मा ला युखज़ुल बजरू, वो सूरत जिसमें बजर नहीं लिया जाता, बीज नहीं लिया जाता, वो सूरत जिसमें बीज नहीं यानी चारा ही मकसूद है, अब मैंने बयान कर दिया, उसमें आकद करोगे तो पहली मर्तबा पर आकद होगा, वो ये जिक्र करने लगे। फी मा ला युखदुल बदरू, वो सूरत में कि जब बीज न लिया जाए, यम बगी अय्या का अल सनतिल ऊला, तो मुनासिब यह है कि यह आकद वाके हो पहले साल पर, भाई पहले साल से क्या मुराद है? कहते हैं अल सनती, वो पहला साल, अल्लती तंतहि रुतबतु फीहा, जिसमें रुतबा जो है वो चारा जो है इंतहा को पहुंच जाए, यानी तैयार हो जाए। बाद अल अकदी, किसके बाद? अकद के बाद। आगे देखिए भाई, वज़िक्रु मुद्दतिन ला यखुरुजु समरु फीहा युफसिदुहा व मुद्दतिन कद यबलुगु फीहा व कद ला यसिहु। सूरत ये कि किसी ने किसी से अकद मुसाकात किया और उसमें मुद्दत भी बाकायदा मुकर्रर की, लेकिन वो फल मसलन तैयार होता है 3 माह में और इसने मुद्दत तय कर ली 2 माह, तो ये 2 माह तो ऐसी मुद्दत है जिसमें ये फल पकता ही नहीं है, तैयार ही नहीं होता। तो कहते हैं ऐसी मुद्दत अकद में शर्त लगाना जिसमें फल तैयार नहीं होता तो यह अकद फासिद है। यह अकद क्या है? फासिद है। और अगर ऐसी मुद्दत तय की जिसमें कभी फल तैयार होता है और कभी फल तैयार नहीं होता, मसलन 3 माह की मुद्दत तय कर ली, हां 3 माह में कभी फल तैयार हो जाता है, कभी 15-20 दिन ऊपर भी लग जाते हैं, तवज्जो है, यानी ऐसी मुद्दत मुतय्यन की है जिसमें दोनों चांस हैं, दोनों एहतमाल हैं, हो सकता है फल पक जाए, हो सकता है ना पके, तो कहते हैं ऐसी मुद्दत तय की तो फिर अकद सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एहतमाल है कि शायद फल पक जाए। तो कहते हैं वह जिक्रु मुद्दतिन, और ऐसी मुद्दत को जिक्र करना, ला या खुरुजु, देखो मुद्दत नकेरा है और नकेरा के बाद ला या खुरुजु फेल आया, तो ये इसके लिए क्या बनेगा? सिफत। तो लिहाजा मुद्दत से पहले ऐसी का लफ्ज ले आओ, और ऐसी मुद्दत जिक्र करना, ला या खुरुजु समरु फीहा, जिसमें फल निकलता नहीं, निकलने से मुराद है पकना, पकना, जिसमें फल पकता नहीं है, पुख्ता नहीं होता, युफसिदुहा, तो ये ऐसी मुद्दत जिक्र करना ये इस आकद को फासिद कर देगा। वह मुद्दतिन, और ऐसी मुद्दत जिक्र करना, कद यब लोगो फीहा, कि कभी कभार उसमें फल पक जाता है, व कद ला, और कभी नहीं पकता, तो यह सिह हो, तो ये मुद्दत जिक्र करना सही है भाई, इससे अकद सही हो जाएगा। ऐ जिक्र मुद्दतिन मुद्दती कजा यह सिहू, यानी इतनी मुद्दत जिक्र करना सही है भाई। फिर क्या करेंगे? इस आपने 3 महीने तय किए हैं और 3 महीने में कभी फल पक जाता है, कभी नहीं पकता। कहते हैं भाई अगर फल पक गया फिर तो शर्त के मुताबिक तकसीम कर लेना, 3 महीने तय हुए थे, 3 महीने में फल पक भी गया है, तो अब तकसीम कर लो, अकल सही हो गया। और अगर जायद दिन लगते हैं तो फिर इस सूरत में वो जो आमिल है उसको अजरे मिसल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अजरे मिसल दिया जाएगा, जितने जायद दिन वो काम करता है फल उसी तरह तकसीम होंगे। आधे आधे की बात हुई थी तो फल फिर भी आधे आधे तकसीम होंगे, लेकिन जो जो जायद 20 दिन वो काम करता है उसकी उसका अजरे मिसल, यानी उस जैसा काम जो कोई करे इतने दिन तक, उसको जो उजरत राइज है लोग देते हैं वो उजरत इसको भी दी जाएगी। फलो खराजा फी वक्त इन सम्मा, अगर फल निकल आया उस वक्त में, निकल आया यानी पक गया, तैयार हो गया, बस अगर फल तैयार हो गया, फी वक्त इन सम्मा, उस वक्त में जो जिक्र किया था, जो वक्त जिक्र किया था उसी में फल तैयार हो गया, फअल शर्ती, तो फल किसके ऊपर, किसके मुताबिक होगा? शर्त के मुताबिक, यानी तकसीम होगा। वह इल्ला, और अगर ऐसा ना हो, यानी फल पक कर तैयार नहीं हुआ उस मुद्दत में, अभी भी कुछ दिन और चाहिए, तो फलिल आमिली अजरुल मिसली, तो फिर आमिल के लिए अजरे मिसल होगा। अमल इला इदरा की समरी, यानी ताकि वो अमल करे फलों के पकने तक, जो जायद दिन है उसका अजरे मिसल उसको दिया जाएगा। और ये भी याद रखें कि मुजारात के अंदर जब जायद दिन लगते थे तो उसको अजरे मिसल भी मिलता था और जमीन का किराया भी देना पड़ता था जितने हिस्से में उसकी फसल होती थी, लेकिन यहां दरख्तों का किराया नहीं होगा। ये कहे कि मुझे दरख्तों का भी किराया दो, भाई मुजारात में जमीन का किराया वसूल होता था तो दरख्तों का भी मुझे किराया दिया जाए, नहीं भाई, जमीन से तो बहुत से काम लिए जा सकते हैं, और दरख्तों को अगर खाली भी कर दिया जाए तो क्या इससे कोई और काम ले सकता है वो दरख्तों से? नहीं, तो लिहाजा यहां पर दरख्तों का किराया नहीं होगा, क्योंकि दरख्त फल ही के लिए लगाए जाते हैं और तो उनका कोई फायदा नहीं होता। तो तो जो जायद मुद्दत है आमिल को उसकी उजरत दी जाएगी, लेकिन बाग वाले को फलों का दरख्तों का किराया नहीं दिया जाएगा। चलिए बस करें भाई, बात यहां तक अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुअल मराम वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम। कोई बात ऐसी तो नहीं जो समझ में ना आई हो? काजरिल हसादी, जैसे कि खेती काटने की उजरत, वर रिफाई और खेती को उठाने की उजरत, व दौसी और खेती को गाहने की उजरत, व तजरियती और खेती में दानों को भूस से अलग करने की उजरत। और कोई बात हल हो गया सारा अच्छी तरह? चलिए बस भाई, चलिए।